हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। झलक सीधे जाकर बुक की शेल्फ से टकरा गई थी, जिससे कई किताबें पूरी तरह से नीचे गिर गई थी। वो शेल्फ भी झलक के ऊपर गिरने ही वाली थी, जिससे उसकी जान तक जा सकती थी। लेकिन वो शेल्फ भी झलक के ऊपर गिरने ही वाली थी, जिससे उसकी जान तक जा सकती थी। लेकिन तुरंत ही झलक झुककर जैसे ही नीचे बैठी, सिद्धार्थ तुरंत उसके पीछे आ गया था और पूरी की पूरी शेल्फ सिद्धार्थ के कमर से जा लगी थी। सिद्धार्थ लाल आंखों से झलक को देख रहा था। झलक ने अभी भी अपना मुंह घुटनों में छुपाया हुआ था, लेकिन जैसे ही झलक को यह एहसास हुआ कि उसके ऊपर कुछ नहीं गिरा है, तो उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर सिद्धार्थ की ओर देखा था। सिद्धार्थ की पीठ पर वो शेल्फ अभी भी गिरी हुई थी, जिससे उसे काफी हद तक चोट लग चुकी थी। लेकिन अगर वो जरा सा भी हिलता डुलता तो वो शेल्फ पूरी तरह से झलक के ऊपर गिर जाती। ये देखकर झलक जल्दी से उठ खड़ी हुई थी और उस शेल्फ को हटाने के लिए सिद्धार्थ के ऊपर से हटाने में उसकी मदद करने लगी थी। जैसे ही झलक ने धीरे से शेल्फ को हटाया, वो शेल्फ सीधे पीछे की ओर जा गिरी और सिद्धार्थ खुराना एक झटके में जमीन पर जा गिरा। अब तो झलक पूरी तरह से डर गई थी और तेज आवाज में चिल्ला पड़ी थी, मिस्टर खुराना, क्या हुआ आपको? इस वक्त सिद्धार्थ की बाजू में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और वहां से खून तक निकलना शुरू हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ ने झलक की ओर देखते हुए कहा था, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार फिर सिद्धार्थ की इस तरह की बातें सुनकर झलक का दिल किया था कि वो उसे वहीं छोड़कर उठ जाए और दूसरी साइड जाकर बैठ जाए, लेकिन झलक का दिल ये गवारा नहीं कर पाया। फिर उसने सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी सहारा दिया और अपने टॉप की एक बाजू को काटकर किसी तरह उसे लंबा किया और सिद्धार्थ के हाथ पर बांध दिया था। हालांकि झलक की एक बाजू पूरी तरह से कट चुकी थी, लेकिन उसने कोई उफ तक नहीं की और सिद्धार्थ के खून को रोकने के लिए उसे कसकर बांध दिया था। तभी सिद्धार्थ झलक को देखकर बोला था, आज रात यहाँ बिताने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। काफी रात हो चुकी है, सभी लोग जा चुके होंगे। मुझे तो उस बेवकूफ रोनित का ख्याल आ रहा है कि क्या उसने एक बार भी मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। उसे मैं सुबह होते ही छोड़ूंगा नहीं। सुबह सारे दरवाजे आकर सुबह के 9 बजे गार्ड खोलेगा। गार्ड को हुक्म है सारे दरवाजे खोलने का। वही आएगा, वही खोलेगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। अब सिद्धार्थ की ये बात सुनकर झलक निराश सी हो गई थी। उसने अपना सिर दीवार से लगा लिया और सिद्धार्थ से थोड़ी सी दूरी बनाकर वहीं बैठ गई थी। साथ साथ वो अपना पेट पकड़कर बैठी थी, क्योंकि इस वक्त झलक को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। लेकिन वहां खाने का तो दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था। हालांकि वो एक पानी की बॉटल अपने साथ ले आई थी। उसने उसी पानी की बॉटल से थोड़ा पानी सिद्धार्थ को पिलाया था और खुद भी थोड़ा सा पानी पिया था। फिर बिना कुछ बोले उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर रणविजय बेचैनी के मारे पूरे हॉल में टहलने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद सिद्धार्थ झलक को सजा देने के लिए कहीं अलग जगह पर लेकर गया है। रणविजय लाल आंखों से दांत पीसते हुए गुस्से में दहाड़ा था और किसी अनहोनी की आशंका से सिद्धार्थ के फ्लोर पर, जहाँ काफी सारे सिस्टम रखे हुए थे, वहाँ उसने जमकर तोड़फोड़ मचा दी थी। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अनामिका उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय का गुस्सा अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। फिलहाल अनामिका ने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई और रणविजय को देखा तो घबराई हुई आवाज में बोली, रणविजय प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। तुमने सिद्धार्थ खुराना की पूरी ऑफिस का क्या हाल कर दिया है? जरा चारों तरफ देखो। ये कहते हुए उसने थोड़ी तेज आवाज में पूरे वर्कर फ्लोर की ओर इशारा किया, जहां हर तरफ तोड़फोड़ मची हुई थी। महंगे सिस्टम, टेबल, कुर्सियां, सब कुछ बर्बाद पड़ा था। ये नजारा देखकर रणविजय शैतानी हंसी हंसने लगा और बोला, तुम्हें लगता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है? रणविजय के लिए अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ झलक चाहिए, सिर्फ झलक। अनामिका मन ही मन झलक के लिए डर रही थी। वो भले ही सब जानती थी, लेकिन रणविजय का गुस्सा अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम एक लड़की की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपने भाई सिद्धार्थ खुराना को चलाना है, उसे फूंकना है, उसे दर्द में देखना चाहते हो? तुम्हें याद है तब मैंने तुमसे झलक और सिद्धार्थ दोनों का जिक्र किया था। भले ही उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि सिद्धार्थ असल में कौन है, और वही सिद्धार्थ है जिससे तुम बचपन से इतनी नफरत करते आ रहे हो, लेकिन उस वक्त पहली बार उन दोनों को देखते ही मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अब तो हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदली बदली सी नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों दोनों के बीच इतनी सारी गलतफहमियां क्रिएट हो गईं। ऊपर से देखो, उसकी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मुझे नहीं लगता रणविजय कि तुम्हें इस तरीके से उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी। ये कहते हुए वो उसके और करीब आकर बोली, बंद करो ये सब एंड बिहेव योरसेल्फ। अब रणविजय उसे घूर कर बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें जिस काम के लिए मैंने यहाँ बुलाया है तुम सिर्फ सीधे तरीके से उसमें मेरी मदद करो, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका को उस वक्त अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल झलक के बारे में सोचकर वो शांत रही, क्योंकि सिद्धार्थ खुराना और झलक दोनों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिलहाल रणविजय और अनामिका दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे, क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी। इतनी तोड़फोड़ मचाने के बाद वे वहीं एक साथ बैठ गए और कब गहरी नींद में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ और झलक, जो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर और थके हुए महसूस कर रहे थे, अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ में भी अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो और चिल्ला सके या कुछ तोड़फोड़ मचा सके, इसलिए सिद्धार्थ वहीं जमीन पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में झलक और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से अपने सिर जोड़कर गहरी नींद में सो चुके थे। अगली सुबह जैसे ही ऑफिस खुला, पूरे ऑफिस का नजारा ही बदल चुका था। फिलहाल गार्ड की ड्यूटी होती थी सारे दरवाजे खोलने की। जैसे ही उसने अंदर का हाल देखा, वो वहीं एक जगह जड़ होकर खड़ा रह गया। इतनी भयानक तोड़फोड़ देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बाकी दरवाजे खोल सके। उसने सोचा कि शायद पुलिस को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो रणविजय और अनामिका के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे यही लगा कि सिद्धार्थ के किसी दुश्मन ने इस तरह का हंगामा मचाया है। ये सोचकर उसने सबसे पहले रौनित को फोन किया और पूरी सिचुएशन समझाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। वहीं रौनित, जो अभी अभी गहरी नींद से उठा था, ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, उसके भी होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो किससे और कैसे बात करे। तभी उसकी नजर रणविजय पर पड़ी, जो वहीं मौजूद था। आगे बढ़कर रौनित गुस्से में बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? रौनित की आवाज सुनते ही रणविजय ने लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखा। उसने आसपास अच्छी तरह नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी सिद्धार्थ दिखाई नहीं दिया। बस इसी बात पर रणविजय का पारा और चढ़ गया। आगे बढ़कर उसने अपने सीधे हाथ से रौनित का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए बोला, बकवास बंद कर, बता कहाँ है तेरा मालिक, कहाँ है सिद्धार्थ खुराना, मुझे सिद्धार्थ खुराना चाहिए। ये कहते हुए रणविजय पूरी तरह आग बबूला हो चुका था।
उसी वक्त अनामिका को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये आदमी रौनित की जान ही ले लेगा। वो अपने सामने किसी बेगुनाह की जान जाते हुए नहीं देख सकती थी। वो चीखते हुए बोली, स्टॉप इट, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है तुम्हारा, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा, आई सेड लीव हिम। लेकिन रणविजय का गुस्सा अब भी काफी हद तक चढ़ चुका था। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और अपना कीमती फीडबैक जरूर दें।